मैं सुधीर कुमार शर्मा, बीए पार्ट थर्ड, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, अब आपको मुगल बादशाह अकबर की राजपूत नीति के बारे में पढ़कर सुनाने जा रहा हूँ, जो एलपी शर्मा द्वारा लिखित किताब में संग्रहित है। अकबर और उसकी राजपूत नीति। अकबर पहला मुगल बादशाह था जिसने राजपूतों के प्रति एक सुनिश्चित नीति अपनाई। उसकी राजपूत नीति दमन और समझौते की नीति पर आधारित थी। अकबर ने जिस राजपूत नीति को अपनाया उसके विभिन्न कारण बताए जाते हैं। अकबर की नीति साम्राज्यवादी नीति थी। संपूर्ण भारत को अपनी अधीनता में लाना उसका लक्ष्य था। जब तक राजपूत शासक उसकी अधीनता को स्वीकार कर लेते तब तक संपूर्ण भारत की विजय पूर्ण विजय नहीं हो सकती थी। अकबर की कुशाग्र बुद्धि ने यह अनुभव कर लिया था कि राजपूतों को शत्रु बनाने की अपेक्षा मित्र बनाना अधिक लाभदायक होगा। राजपूतों का शौर्य, चरित्र और गुण प्रभावशाली थे। शारीरिक बल, शस्त्र कौशल, नैतिक चरित्र, जीवन की अपेक्षा युद्ध में मर जाने की गौरवपूर्ण मानना, दिए हुए वचन को पूरा करना और धन या किसी अन्य लालच से न खरीदी जाने वाली वफादारी के गुणों को राजपूत ने सदियों से सुरक्षित रखा था। अकबर इन गुणों की उपयोगिता को समझता था। अफगान और मिर्जा वंश के सरदारों के द्वारा किए गए विद्रोहों ने उसे राजपूतों की मित्रता की लाभों को और अधिक स्पष्ट किया। राजपूतों का सहयोग प्राप्त करके अकबर अपने शासन के आधार को विदेशियों की शक्ति पर आधारित करने के स्थान पर भारतीयों की शक्ति पर निर्भर कर सकता था। इस प्रकार राजपूतों के प्रति अपनाई गई अकबर की नीति के महत्वपूर्ण कारण राजनीतिक थे। इसके अतिरिक्त राजपूताना की जहां राजपूतों के प्रमुख राज्य थे ऐसे भौगोलिक स्थिति थी कि उसकी विजय अकबर के लिए आवश्यक थी। उत्तर भारत के गुजरात के बंदरगाहों के माध्यम से होने वाले समुद्री व्यापार के मार्ग राजपूताना होकर थे। यदि राजपूताना मुगलों के अधिकार में नहीं होता तो उस व्यापार में बाधा आती थी। राजपूताना के ये मार्ग ऐसे भी थे जो वर्षा के मौसम में भी चालू रह सकते थे, जबकि अन्य मार्ग वर्षा के मौसम में बेकार हो जाते थे। हज के यात्री भी अधिकांशतया इसी मार्गों से जाते थे, क्योंकि गुजरात के खंभात या सूरत के बंदरगाहों से ही वे अपनी समुद्री यात्रा आरंभ करना पसंद करते थे। दक्षिण भारत जाने का सुगम मार्ग भी राजपूताना होकर था। यहाँ नमक और संगमरमर जैसे पदार्थ भी प्राप्त थे। इस कारण राजपूताना की विजय अकबर के लिए आर्थिक, धार्मिक और दक्षिण भारत में राज्य विस्तार की लक्ष्य की पूर्ति के लिए भी उपयोगी था। अकबर की धार्मिक नीति भी राजपूतों से मित्रता करने में सहायक थी। अकबर का उद्देश्य राजपूतों को अपनी अधीनता में लाकर उन्हें सहयोगी बनाना था। उसका प्रमुख लक्ष्य अपने वंश के अधिकार को भारत में दृढ़ करना और उसकी सीमाओं का अधिकतम विस्तार करना था। राजपूत के प्रति अपनी नीति में वह अपने को लक्ष्य को नहीं भूला था। आरपी त्रिपाठी के अनुसार अकबर का उद्देश्य राजपूतों को अपने प्रति निष्ठावान बनाना था। इसके लिए चार बातें आवश्यक थी। एक, राजपूत शासक नियमित रूप से उसे एक निश्चित धनराशि खराज के रूप में दे। द्वितीय, अपने पड़ोसी या अन्य राज्यों से उनके संबंध प्रत्यक्ष रूप से ना हो, अपितु मुगल बादशाह के माध्यम से हो। तृतीय, आवश्यकता होने पर वो मुगल बादशाह को सैनिक सहायता दे। और चतुर्थ, वे सभी अपने को स्वतंत्र इकाइयों के रूप में न मानकर राज्य का अभिन्न अंग माने। व्यवहार में अकबर ने जिस राजपूत नीति का पालन किया उससे निम्नलिखित तीन बातें स्पष्ट होती हैं। राजपूतों के महत्वपूर्ण दुर्गों पर अधिकार, जैसे चित्तौड़, मेड़ता, रणथंभौर, कालिंजर आदि पर, इन किलों पर आधिपत्य करने से अकबर ने राजपूतों का विरोध करने की शक्ति को दुर्बल कर दिया। ब, स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार करने वाले अथवा विवाह संबंधों के इच्छुक राजपूत राजाओं को अपनी अधीनता में लेना। ऐसे राजपूत राजाओं को अपनी अधीनता में लेकर उनसे एक निश्चित वार्षिक कर लेकर अकबर ने उनके राज्य को उन्हीं को वापस कर दिए। उन्हें और उनके संबंधियों को राज्य की सेवा में ले लिया। उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें राज्य में बड़े बड़े पद दिए गए। उन्हें आंतरिक शासन में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। उनके सम्मान को सुरक्षित रखा तथा उन्हें सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक क्षेत्र में समानता प्रदान की। राजपूतों के साथ की गई संधियां भी ऐसी सम्मानपूर्ण थी जिनके कारण अकबर अधिकांश राजपूत राजाओं को स्वेच्छा से अपनी अधीनता में ला सका। इसके अतिरिक्त वह उन्हें सम्मानित पद प्रदान करता था। राजा भगवान दास और राजा मान सिंह जैसे राजपूत सरदार इसके उदाहरण थे। इससे वह उनकी वफादारी भी प्राप्त कर सका, जिससे राजपूतों की योग्यता को मुगल वंश का लाभ प्राप्त हुआ। स, विरोधी राजपूत राजाओं को युद्ध करके अपनी अधीनता में लाने का प्रयत्न, जैसे मेवाड़ राज्य के उदाहरण से स्पष्ट होता है। अकबर की राजपूतों के किले को जीतने की नीति के अंतर्गत 1562 ईस्वी में मेड़ता पर अधिकार किया गया, जो मेवाड़ के अधीन सरदार जयमल के अधिकार में था। 1568 ईस्वी में मेवाड़ से चित्तौड़ का किला छीन लिया गया। 1569 ईस्वी में राजा सुरजन राय को रणथंभौर का किला सौंपने के लिए बाध्य किया गया और 1569 ईस्वी में राजा रामचंद्र से कालिंजर का किला ले लिया गया। स्वेच्छा से अकबर की अधीनता को स्वीकार करने वाले राजपूत राजाओं में सबसे पहला आमेर जयपुर का राजा भारमल था। 1562 ईस्वी में राजा भारमल ने अकबर से भेंट की, उसकी अधीनता को स्वीकार किया और अपनी पुत्री का विवाह अकबर से कर दिया। इसी राजपूत राजकुमारी के गर्भ से शाहजादा सलीम का जन्म हुआ। अकबर के राजा भारमल अकबर फोरी एक बार कन्फर्मेशन के लिए और अकबर ने राजा भारमल, उसके पुत्र राजा भगवान दास और पोते मान सिंह को राज्य में सम्मानित पद प्रदान किए। चित्तौड़ के पतन के पश्चात मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर तथा अन्य बहुत से राजपूत राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और कुछ ने अकबर से विवाह संबंध स्थापित किए। इसी प्रकार हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात वासबाणा, बूंदी, ओरछा आदि के राजपूत राजाओं ने भी स्वेच्छा से अकबर की संधि स्वीकार कर ली। इस प्रकार अधिकांश राजपूत राजाओं ने अकबर की अधीनता को थोड़े से बल प्रदर्शन के बाद ही स्वीकार कर ली। राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से, दोनों ही दृष्टियों से मेवाड़ मुगलों के लिए महत्वपूर्ण था। राणा उदय सिंह ने मालवा के राजा बाज बहादुर को अपने यहाँ शरण दी और विद्रोही मिर्जाओं को उसका संरक्षण प्राप्त हुआ। राणा ने अकबर की अधीनता को मानने से इनकार कर दिया था और वह उन राजपूतों को घृणा से देखता था जिन्होंने अकबर से विवाह संबंध स्थापित किए थे। राजपूत राजाओं को अकबर की अधीनता को सफलता से स्वीकार करने में सहायता हो सकती थी, जैसा कि हुआ भी। आर्थिक दृष्टि से मेवाड़ का महत्व इसलिए था क्योंकि वह मुगल साम्राज्य के पश्चिमी समुद्र तट के व्यापारिक मार्ग पर था। गुजरात की विजय के बाद पश्चिम देशों से मुगल साम्राज्य का जो व्यापार होता था उसे राजस्थान के मार्ग से गुजरना पड़ता था। मेवाड़ शत्रु राज्य के विरुद्ध इस व्यापारिक मार्ग में बाधा उपस्थित कर सकता था और करता भी था। गुजरात की सुरक्षा और यहाँ से उत्तर भारत का होने वाला व्यापार की सुरक्षा के लिए मेवाड़ का मुगलों की अधीनता में होना आवश्यक था। 1567 ईस्वी में अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। अपने सरदारों की सम्मत से राणा उदय सिंह अरावली की पहाड़ियों में चला गया, जहां उसने अपने नवीन राजधानी उदयपुर की नींव डाली। सरकार ने चित्तौड़ का घेरा डाल दिया और कई महीने के पश्चात 1568 ईस्वी में किले को जीतने में सफलता पाई। परंतु चित्तौड़ को जीतने मात्र से मेवाड़ की विजय नहीं पूरी हुई। मेवाड़ का अधिकांश भूप्रदेश राजा के हाथों में रहा। 1572 ईस्वी में राणा उदय सिंह की मृत्यु हो गई। कर्नल टाड ने उदय सिंह को दुर्बल और डरपोक बताया है, परंतु उनका मत तथ्यों के आधार पर सिद्ध नहीं होता। उदय सिंह ने अपने को वंश और परिवार की सुरक्षा के लिए सरदारों की सम्मति से चित्तौड़ के किलों को छोड़ा था और उसने आजीवन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। इस कारण उसे दुर्बल, डरपोक अथवा अपने वंश के लिए अशोभनीय स्वीकार नहीं किया जा सकता। अपनी मृत्यु के अवसर पर उदय सिंह ने अपने पुत्र जगमल को अपना उत्तराधिकारी बनाने की इच्छा प्रकट की थी, परंतु राजपूत सरदारों ने उसे स्वीकार नहीं किया और उसके सबसे बड़े पुत्र प्रताप सिंह को राणा बनाया। राणा प्रताप की दृढ़ता, उसकी शौर्य और मुगलों के विरुद्ध संकल्प संघर्ष का मेवाड़, राजस्थान और भारत के इतिहास में गौरवपूर्ण स्थान रखता है। अकबर ने राजा मान सिंह, राजा भगवान दास और राजा टोडरमल को राणा प्रताप के पास भेजकर समझौते के प्रयत्न किए, परंतु वे सफल नहीं हुए। उसी अवसर पर बूंदी और मारवाड़ के विद्रोहों ने अकबर को विश्वास दिला दिया कि राणा प्रताप को दबाए बिना राजपूत अपने विरोधी भावना को समाप्त नहीं करेंगे। राजा मानसिंह के नेतृत्व में एक मुगल सेना राणा के विरुद्ध भेजी गई और 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का महत्वपूर्ण युद्ध हुआ। इस युद्ध के पश्चात राणा पहाड़ों और जंगलों में चला गया। 1596 ईस्वी में राणा प्रताप की मृत्यु हुई। उसने आजीवन मुगलों से संघर्ष किया और अंत में चित्तौड़ के किले के अतिरिक्त मेवाड़ के अधिकांश भूप्रदेश को अपने अधिकार में करने की सफलता पाई। उसकी मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र अमर सिंह ने भी युद्ध को जारी रखा और मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न में लगा रहा। इस प्रकार अकबर मेवाड़ की पूर्णतया जीतने अथवा दबाने में असफल रहा, परंतु इसमें संदेह नहीं कि मेवाड़ की शक्ति पर्याप्त सीमित हो गई थी। उससे मुगलों की संघर्ष एकाकी था और अकबर की साम्राज्य विस्तार की नीति को रोकने में सफल नहीं हुआ था। अकबर की राजपूत नीति सफल हुई। मेवाड़ के भूप्रदेशों को छोड़कर अन्य सभी राजपूत राज्य अकबर की संप्रभुता के अधीन कर लिए। जो राजपूत शासक पिछले 350 वर्षों से मुसलमानी सत्ता का सफलता से विरोध करते आ रहे थे, अब मुगल साम्राज्य के वफादार सरदार बन गए थे और उन्होंने मुगल साम्राज्य के विस्तार में महत्वपूर्ण भाग लिया। कर्नल टाड ने लिखा है, वास्तव में मुगल साम्राज्य का संस्थापक अकबर था। वह राजपूत स्वतंत्रता का प्रथम सफल विजेता था। उसकी नीति के कारण राजपूत अपने राज्यों की स्वतंत्रता की भावना एवं आदर्शों को भूल गए और उन्होंने प्रसन्नता से अपने गौरवों एवं शौर्य को मुगल वंश के गौरवों एवं शौर्य के साथ आत्मसात कर दिया। यह अकबर और राजपूत नीति की सबसे बड़ी सफलता थी। इससे मुगल साम्राज्य के विस्तार में सफलता मिली। अकबर ने राजपूत राजाओं को विवाह संबंधों के लिए बाध्य नहीं किया था और उसकी राजपूत पत्नियों को पूर्ण सम्मान प्राप्त होता था। इसके अतिरिक्त बाबर ने किसी भी राजपूत स्त्री को विवाह से पहले इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए नहीं कहा और बाद में भी उनको अपने धर्म के अनुसार पूजा आदि करने की सुविधा दी गई। इसी प्रकार यह कहना भी भूल होगी कि राजपूत जाति शौर्यविहीन अथवा कायर हो गई थी। यदि अकबर ने राजपूत के राज्यों को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित करने, उनको सम्मानित करने अथवा उनके धर्म कार्यों को आक्रमण की नीति अपनाई होती तो राजपूत जाति अकबर का उसी प्रकार विरोध करती जैसे उसने औरंगजेब के समय में किया, परंतु अकबर ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया। अकबर केवल यह चाहता था कि राजपूत राजा उसकी अधीनता को स्वीकार कर ले, उसको कुछ वार्षिक कर दे, अपनी विदेशी नीति उसे सौंप दें, आवश्यकता के अवसर पर उसे कुछ निश्चित संख्या में सैनिक सहायता दें और अपने आप को मुगल साम्राज्य का अंतरंग भाग माने। इसके बदले में वह उनको आंतरिक मामलों में स्वतंत्रता, उनके सम्मान की सुरक्षा, उनको धार्मिक स्वतंत्रता, योग्यता के अनुसार मुगल साम्राज्य में श्रेष्ठतम पद देने को तत्पर था। इस बात को ध्यान में रखने की है, अकबर ने भारत में मुसलमान शासकों से जीते हुए सभी राज्यों को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था, किंतु राजपूतों की किसी भी महत्वपूर्ण राज्य को गोंडवाना के अतिरिक्त मुगल साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त अकबर ने राजपूतों को एवं अन्य जागीरें भी प्रदान की। इस प्रकार अकबर के आधिपत्य को स्वीकार करने वाला शासकों को दोहरा लाभ था, अपने राज्यों को अतिरिक्त मनसबदारों के रूप में अतिरिक्त जागीरें प्राप्त करके उनकी शक्ति, धन और सम्मान सभी का विस्तार हुआ। इसने भी राजपूत शासकों के स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए ललायत किया। अकबर की यह उदार नीति उसकी सफलता का मुख्य कारण बना। इसके साथ अकबर महान का धार्मिक नीति भी खत्म हुआ।